समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे। सुप्रभात। AIR FM गोल्ड पर कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी को फरहत नाज और तन्वी का नमस्कार। आज 25 अगस्त है, समय हुआ है 7:30:31। कहते हैं बचपन का कोई सानी नहीं होता, प्यारी प्यारी शरारते, बेशकीमती दोस्ती और सिर्फ खेलना, कुछ ऐसा ही होता था सबका बचपन। लेकिन शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी ने वो बचपन भुला दिया। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में ये गीत काफी है पुरानी यादों को ताजा करने के लिए। तो आइए बचपन की यादों को आज फिर से ताजा करने का वादा करते हैं और पुराने दोस्तों से बातचीत करने का इरादा करते हैं, ताकि आपका और हमारा आज का दिन और यादगार बन जाए और हम सब इस व्यस्त जिंदगी से थोड़ा सा समय अपने दोस्तों को दे पाए। तो आइए इसी सोच के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और तन्वी से जानते हैं कार्यक्रम की रूपरेखा। नमस्कार तन्वी।
नमस्कार फरहत। गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी FM गोल्ड ऑन 100.1 MHz एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। वेल आई ट्रूली अग्री विद यू दैट द चाइल्डहुड मेमोरीज आर सो स्पेशल एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन हु डजंट रिमेंबर दोज लिटिल थिंग्स दैट वी डिड व्हेन वी वर किड्स।
बिल्कुल, क्योंकि जब हम बचपन की यादों को ताजा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक बचपना हमारे अंदर भी जाग जाता है।
एब्सोल्युटली एंड दैट रिमेन्स within us throughout. So today is 25th of August, like Farhat said. Let's begin our program with the news headlines, but before that let me just wish you a very happy Sunday. The very first headline would be, Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 AM today. It will be the 113th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast on the entire network of Akashwani and Doordarshan, AIR News website and News On Air mobile application. It will also be live streamed on the YouTube channels of the AIR News, DD News, PMO and Information and Broadcasting Ministry. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast.
मन की बात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में जलगांव और राजस्थान में जोधपुर का दौरा करेंगे। वे जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी वहां 11 लाख लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करेंगे। प्रदेशभर की लखपति दीदियों से बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री 2,500 करोड़ रूपये के कोष की शुरूआत करेंगे, जिससे स्व सहायता समूह के करीब 48 लाख सदस्यों को फायदा होगा। श्री मोदी 5,000 करोड़ रूपये का बैंक ऋण भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर बाद राजस्थान के जोधपुर जाएंगे। वे राजस्थान उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। श्री मोदी राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे।
The Union Cabinet has approved the Unified Pension Scheme for government employees, which provides for an assured pension. Addressing the media after the Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said that the first pillar of the scheme ensures 50% of the average basic pay drawn over the last 12 months prior to superannuation for a minimum qualifying service of 25 years. The second pillar guarantees that 60% of the pension is assured for the family after the employee's demise. There will be assured minimum pension at least 10,000 rupees per month on superannuation after minimum 10 years of service. There is inflation indexation on assured pension, on assured family pension and assured minimum pension. There will be dearness relief based on All India Consumer Price Index for industrial workers as in case of service employees. There will be lump sum payment at superannuation in addition to gratuity. Mr. Vaishnav noted that about 23 lakh central employees would benefit from this scheme. It will be effective from 1st of April 2025. Mr. Vaishnav said that the cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi also approved the Bio-E3 biotechnology for economy, environment and employment policy to foster high-performance biomanufacturing. Mr. Vaishnav said that the policy will provide innovation-driven support to research and development and entrepreneurship across thematic sectors.
जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम और मतदान सत्यापन पर्ची मशीन वीवीपैट की जांच का पहला चरण कल जम्मू जिले में सफलतापूर्वक पूरा हुआ। यह प्रक्रिया निर्वाचन अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में की गई। इस प्रक्रिया से तैयार सूची राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सौंपी गई और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई।
Two NASA astronauts, Sunita Williams and Barry Wilmore, will return to Earth in February 2025 with SpaceX. They were originally on an 8-day mission but will now spend around 8 months in orbit due to issues with their Boeing Starliner spacecraft. NASA announced that the Starliner will return to Earth without crew. The spacecraft faced problems including helium leaks and malfunctioning thrusters during its journey to the International Space Station. Boeing and SpaceX were awarded billion-dollar contracts by NASA for commercial space flights. Engineers from Boeing and NASA have been working to resolve the technical issues with the Starliner and are conducting tests to ensure the astronauts' safe return.
ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो वियेरा आज 4 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री वियेरा मंगलवार को 9वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों मंत्री इस वर्ष ब्राजील में प्रस्तावित G20 बैठक में भारत की अध्यक्षता में पिछले वर्ष हुई बैठक के परिणामों को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्राजील के विदेश मंत्री की इस यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने और सहयोग की नई संभावनाएं तलाशने का अवसर मिलेगा।
Prime Minister Narendra Modi has announced an ex gratia payment for the victims of the bus accident in Tanahu district of Nepal. An ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund will be given to the next of kin of each deceased. The injured will be given 50,000 rupees. An Indian embassy in Kathmandu said 27 Indians have lost their lives in the accident.
और खेलों में तन्वी, बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी पत्री चीन के चेगादू में चल रही एशिया अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप के एकल फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने थाईलैंड की कोंकेव काकानिक को 21-19, 21-10 से हराया। फाइनल में पत्री का मुकाबला वियतनाम के ग्युएन थी थू हुनकेंग से होगा। और अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और महानगरों का रुख कर लेते हैं। तन्वी, सबसे पहले क्या है आपके पास?
The first, let me begin with Bengaluru. The South Western Railways, with Hubli as its headquarters, has started QR code facilities to buy tickets by the commuters. The 102 counters in 87 railway stations under Hubli division will disperse tickets providing QR code for UPI payments. That is to say that the passengers can make payment using the QR code scanner at the counters and buy their own tickets. The railway division has also installed automatic ticket vending machines where the passengers can purchase the tickets while making the payment using the QR code. Once the payment is made in a digital mode, the vending machine will generate the ticket and issue it to the passengers. All the shops, food plazas, pay and use toilets and parking lots in these railway stations offer QR code for payment by the passengers. Now let's go to Hyderabad. The Hyderabad Disaster Management and Asset Protection Agency officials carried out the demolition of the N Convention Centre, a property owned by renowned Tollywood actor Nagarjuna at Jubilee Hills in Hyderabad yesterday. Officials from the Hyderabad Disaster Management and Asset Protection Agency, accompanied by local police, demolished the N Convention. The demolition follows allegations that the convention centre was illegally constructed by encroaching upon Tamidi Sheruvu, a local water body. Responding over demolition of convention centre, actor Nagarjuna in an ex-post said he was pained by unlawful manner of demolition carried by contrary to existing stay orders by the court. And if we talk about Chennai, 20 government primary school students from Tamil Nadu embarked on a week-long educational tour to Hong Kong as a reward for excelling in state-level competitions. The students from various districts will visit Disneyland, the old clock tower and other landmarks of the country. This is an initiative to promote extracurricular engagement and reduce school dropouts. Kalai Thiruvia is a festival of arts introduced in 2022-23 and encourages students from classes 1st to 6th to engage in arts, culture and sports. School Education Minister Anbil Mahesh said that the government has invested 3 crore rupees in this initiative. So these were the updates from three cities, Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Now let's ask Farhat about Delhi, Mumbai and Kolkata.
जी तन्वी, सबसे पहले शुरुआत कर लेते राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर से। विख्यात सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान ने कल नई दिल्ली के आकाशवाणी परिसर के रंग भवन में आजादी संगीत सम्मेलन के आयोजन के अंतर्गत एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और आकाशवाणी की महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती सहित कई गणमान्य लोग इस अवसर पर उपस्थित रहे। समारोह में उस्ताद अमजद अली खान उनके परिवार को आकाशवाणी द्वारा सम्मानित किया गया। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अमजद अली खान की प्रस्तुति के कुछ अंश। इस बीच उत्तर रेलवे ने जन्माष्टमी के पर्व को देखते हुए आम जनता की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए 2 विशेष रेलगाड़ी चलाने का निर्णय लिया है। ये गाड़ियां तिलक ब्रिज स्टेशन से मथुरा जंक्शन और दिल्ली जंक्शन से मथुरा जंक्शन के बीच आज और कल दोनों तरफ से चलाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त जन्माष्टमी के अवसर पर रेलवे ने गाजियाबाद पलवल ईएमयू को अस्थायी तौर पर मथुरा जंक्शन तक और मथुरा जंक्शन से यात्रा विस्तार देने का निर्णय लिया है। और अब मुंबई का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा है कि मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा, कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र के पवई में समुद्री प्रशिक्षण संस्थान एमटीआई में वरिष्ठ अधिकारियों और युवा कैडेटों को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने इस दिशा में सरकार के कदमों और पहलों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि सरकार भारत को शीर्ष 10 समुद्री राष्ट्रों में शामिल करना चाहती है। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत पोत निर्माण, पोतों की मरम्मत, पोत पुनर्चक्रण, आयात निर्यात कारोबार, तटवर्ती पोत परिवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों जैसी समुद्री क्षेत्र से जुड़े व्यापार के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। और अब कोलकाता का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रधानाचार्य संदीप घोष के खिलाफ वित्तीय अनियमितता मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। संदीप घोष से फिलहाल कोलकाता में पूछताछ जारी है और उनका पॉलीग्राफ जांच भी चल रही है। ब्यूरो ने संदीप घोष समेत 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अदालत से मंजूरी ले ली है। इस बीच दुष्कर्म मामले में न्याय की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल के विभिन्न विभागों में विरोध प्रदर्शन भी जारी है। कल कई वामपंथी दलों के छात्रों और युवा संगठनों ने कोलकाता पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। महानगरों की खबरों के बाद अब रुख कर लेते हैं मौसम का। तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की। तो आज 24 घंटे के दौरान बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे, बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कोलकाता में भी बारिश रहेगी, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
Chennai is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 28 degrees and maximum will be around 36 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky but with a few spells of rain or thunder showers. The minimum temperature was 21 degrees and maximum will be around 30 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with 1 or 2 spells of rain or thunder showers. The temperature will hover somewhere between a minimum of 23 degrees and a maximum of 31 degrees Celsius.
और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। इतिहास में 25 अगस्त की तारीख पर खेल जगत से जुड़ी तीन बड़ी घटनाएं दर्ज हैं। पहली घटना की बात की जाए तो 1957 में 25 अगस्त को ही भारत की पोलो टीम ने फ्रांस में खेली गई विश्व पोलो चैंपियनशिप में खिताबी विजय हासिल की थी।
इन 1975 बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश।
तन्वी, बात की जाए अगर दूसरी घटना की तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वालों की कतार में शामिल शेन वॉर्न ने 25 अगस्त यानी आज ही के दिन 400 विकेट का आंकड़ा पार किया था।
In 1989, the Voyager 2 spacecraft provided evidence of the existence of the rings around the planet Neptune.
वहीं 2018 के जकार्ता एशियाई खेलों से जुड़ी हुई खबर है, जब भारत के शॉटपुट एथलीट तेजिंदर पाल सिंतूर ने रिकॉर्ड प्रदर्शन कर सोने का तमगा हासिल किया।
And in 2010, the discovery of a solar system around the star HD 10180 in 2010 unveiled the existence of a potential planet roughly 1.4 times the size of Earth.
खेल इतिहास के अलावा सन 1940 में आज ही के दिन लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया सोवियत संघ में शामिल हुए और 1980 में जिम्बाब्वे संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। तो ये तो थी बात इतिहास के पन्नों की। और तन्वी, अब क्या है खास हमारे आखिरी सेगमेंट में?
Absolutely, there's so much special about in this last segment. We're talking about who took birth on this particular day and who left for their heavenly abode on this particular day, that is 25th of August. Today is the birth anniversary of Veer Chand Gandhi, a Jain scholar who represented Jainism at the first World Parliament of Religions held in Chicago in 1893. A barrister by profession, he worked to defend the rights of Jains and wrote and lectured extensively on Jainism, other religions and philosophy. So he received a positive response at the parliament and was asked to deliver more lectures. He stayed 2 years in the US and 1 year in the UK. He went outside India to promote Jain values on 2 other occasions and is known for giving about 535 lectures on Jainism and having attracted followers from outside India to Jainism. He was awarded various medals for his lectures, and one more thing about him was he was a polyglot who spoke 14 languages including Gujarati, Hindi, Bengali, English, Prakrit, Sanskrit and even French. In 1885, at the age of 21, he became the first honorary secretary of the Jain Association of India.
तो यानी कि बहु प्रतिभा के क्षेत्र में एक और नाम हम आपसे जिक्र करना चाहेंगे और वो है नाम हरिभाऊ उपाध्याय का। तत्कालीन ग्वालियर राज्य में उज्जैन के निकट भरोसा में 24 मार्च 1892 को जन्म लेने वाले हरिभाऊ उपाध्याय स्वतंत्रता के बाद अजमेर के मुख्यमंत्री बने। स्वतंत्रता सेनानी, प्रसिद्ध साहित्यकार और मध्य प्रदेश की माटी के लाल हरिभाऊ उपाध्याय की आज जयंती है। हरिभाऊ उपाध्याय का विद्यार्थी जीवन से ही रुझान साहित्य के प्रति हुआ। हिन्दी, संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन के बाद वे लेखन की ओर अग्रसर हुए। हरिभाऊ उपाध्याय ने सबसे पहले आदुम्बर मासिक पत्र के प्रकाशन द्वारा हिंदी पत्रकारिता जगत में पदार्पण किया। वर्ष 1911 में वे आदुम्बर के संपादक बने। महावीर प्रसाद वेदी के साथ सरस्वती में कार्य करने के बाद हरिभाऊ ने प्रताप और प्रभा के संपादन में योगदान दिया। महात्मा गांधी के निजी सचिव के रूप में भी उन्होंने 1923 में भारत यात्रा की। महात्मा गांधी से प्रभावित हुए और हरिभाऊ उपाध्याय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़े। पुरानी अजमेर रियासत में इन्हें कई बार जेल का सामना करना पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वो अजमेर के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। हरिभाऊ की हिंदी साहित्य को विशेष देन उनके द्वारा बहुमूल्य पुस्तकों का रूपांतरण भी है। हरिभाऊ उपाध्याय की अनेक पुस्तकें बापू के आश्रम में स्वतंत्रता की ओर सर्वोदय की बुनियाद आज हिंदी साहित्य जगत की अनमोल धरोहर मानी जाती है।
And we are talking about another great person today whose death anniversary is today. Yes. And we are talking about nobody else but Neil Armstrong, an American astronaut and aeronautical engineer who in 1969 became the first person to walk on the moon. He was also a naval aviator, test pilot and university professor. So when Armstrong first stepped onto the lunar surface, he famously said, "That's one small step for a man, one giant leap for mankind." And this was broadcast live to an estimated 530 million viewers worldwide. And Apollo 11 was a major US victory in the space race by fulfilling a national goal proposed in 1961 by nobody else but President John F. Kennedy of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth before the end of the decade.
जी बिल्कुल तन्वी, जो आपने अंग्रेजी में बताया वो मैं हिंदी भाषा में बताना चाहूंगी। जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की खड्डों वाली सतह पर कदम रखा तो उन्होंने ये बात सबसे पहले कही थी कि ये मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है, मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। तो धरती पर हर देश में जो मौजूद लोग थे वहां पर राहत की सांस ली थी।
एब्सोल्युटली।
और अब आगे बढ़ते हैं, जाने माने फिल्म अभिनेता राजीव कपूर की भी आज जयंती है। साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म एक जान है हमसे बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले अभिनेता को 1985 में राम तेरी गंगा मैली से पहचान मिली थी। तो आइए सुन लेते हैं उसी फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।
छोटे छोटे झरने हैं, झरनों का पानी छूके कुछ वादे करने हैं।
झरने तो
रात ही रात में किसने सजा दी, लगता है जैसे।
इसके बाद राजीव कपूर लवर बॉय, अंगारे, जलजला, शुक्रिया, हम तो चले परदेश जैसी फिल्मों में भी नजर आए।
वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट टुडे आलिया। Today is her death anniversary. She was an American singer and actress. She has been credited with helping to redefine contemporary R&B, pop and hip-hop, earning her the nicknames the Princess of R&B and Queen of Urban Pop. On August 25th in 2001, at the age of just 22, Alia was killed in an airplane accident in the Bahamas along with 8 other people on board when the overloaded aircraft she was traveling in crashed shortly after takeoff. Accolades include 3 American Music Awards and 2 MTV VMAs, along with 5 Grammy Award nominations. So let's hear a beautiful song by her, Let Me Know. It's also the death anniversary of Asit Sen, an Indian film director, cinematographer, documentary filmmaker and screenwriter who worked in both Bengali and Hindi cinema. He was born in Dhaka, which is now modern-day Bangladesh. He directed 17 feature films in Hindi and Bengali and was most known for the films Deep Jwale Jai and Uttar Falguni in Bengali, Mamta Khamoshi, Anokhi Raat and Safar in Hindi. So let's listen to this beautiful rendition from the movie Khamoshi, Wo Shaam Kuch Ajeeb Thi.
Wo kal bhi paas paas thi, wo aaj bhi kareeb hai, wo shaam kuch ajeeb thi, ye shaam भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी।
बहुत ही खूबसूरत गीत, वो शाम बहुत अजीब थी। और मुझे लगता है कि शाम के बाद आज की जो सुबह भी है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। और हम आज इतनी सारी शख्सियतों को याद कर रहे हैं। अब इस अगला जो नाम है वो है अहमद फराज का। फराज की शख्सियत से जुड़ी हुई एक अहम बात यह है कि वो अपने दौर के सबसे लोकप्रिय शायरों में से थे। जितनी मोहब्बतों और दिलचस्पी के साथ फराज को सुना गया है उतना शायद ही किसी और शायर को सुना गया हो। फराज की कबूलियत हर सतह पर हुई। फराज की शायरी जिन दो मूल भावनाओं, रवैयों और तेवरों से मिलकर तैयार होती है, वो है प्रतिरोध, हस्तक्षेप और रुझान। उनकी एक बहुत ही खूबसूरत सी शायरी है तन्वी, जो मुझे बहुत पसंद है। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। तो आइए सुन लेते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फराज का एक और खूबसूरत सा ये नगमा।
Today is the birthday of Nitya Sri Mahadevan, a Carnatic musician and playback singer for film songs in many Indian languages. Nitya Sri has performed in all major sabhas in India. She has released more than 500 albums. She is best known for her rendition of the A.R. Rahman composition and her playback debut song in the Tamil movie Jeans. So let's enjoy the song with which she made her debut. और अब हम याद कर रहे हैं मखदूम मोहिउद्दीन को, प्रगतिशील आंदोलन से संबंधित प्रमुखतम शायरों में शामिल रहे जिन्होंने क्रांतिकारी विचारों और रूमानियत के मेल से दिमाग और दिल दोनों को छूने वाली शैली पैदा की और लोकप्रियता का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। हैदराबाद के मजहबी घराने में इनका जन्म हुआ। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उर्दू के लेक्चरार भी रहे। उनका कहना था, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। अभी आप सुन रहे थे मखदूम मोहिउद्दीन की यह खूबसूरत सी शायरी जगजीत सिंह की आवाज में। Today is also the birthday of Vijayata Pandit, an Indian actress and playback singer most famous for her first film, that is Love Story, which was released in 1981. Not many know that she's also a singer and she has sung songs in the films like Jo Jeeta Woh Sikandar, Kabhi Haan Kabhi Na and many more. So let's listen to the song that made her an ultimate star from her debut movie Love Story.
कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में ये घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है,
मैं आया 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 आया
आया।
Also the birthday of Blake Lively. She is an American actress. And apart from that, it's also the birthday of Billy Ray Cyrus, an American country singer, songwriter and actor, having released 16 studio albums and 53 singles since 1992. From 2006 to 2011, he co-starred in the Disney Channel series Hannah Montana with his own daughter Miley Cyrus in the role of the titular character's fictional father Robbie Ray Stewart, a clear reference to his real name. So here comes the song Achy Breaky Heart for all of you.
Tell my fingertips they won't be reaching out for you no more. Don't tell my heart, my achy breaky heart, I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy breaky heart,
he might blow up and kill his plan.
और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमें कहना होगा आपसे अलविदा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। तो आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर।
Stay tuned for Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning in. Have a superb day. Namaskar.